भर 23 नवंबर शनिवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में आया अहम मोड़, देवेंद्र फडणवीस ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार।
मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे।
शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया।
मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई है और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती।
साथ ही होगा बीबीसी इंडिया बोल भी, जिसमें चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन कॉल करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरें होंगी और भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तन्वी से। महाराष्ट्र में कल रातोंरात बदले घटनाक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ एनसीपी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकार बनने के बाद जहां शरद पवार ने कहा कि ये पार्टी का फैसला नहीं है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि एनसीपी के सारे विधायकों का समर्थन उनके पास है। उधर शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी ने अंधेरे में पाप किया है। बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने कहा है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में भारतीय सीमा से बांग्लादेश आने की कोशिश करने वाले 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन लोगों का दावा है कि वे मूल रूप से बांग्लादेश के ही हैं और काम की तलाश में भारत गए थे। इनमें से कुछ लोगों ने बताया कि भारत सरकार गैर कानूनी ढंग से देश में रह रहे लोगों को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है, इसलिए वे डर से बांग्लादेश लौट आए हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश की सीमा से असम राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू कर दिया है, जिसके चलते करीब 20 लाख लोगों की नागरिकता खतरे में आ गई है। ब्रिटेन के लेबर पार्टी और विपक्ष के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने ब्रेग्जिट के मुद्दे पर न्यूट्रल रुख अपनाने को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी आम चुनाव जीतती है तो ब्रेग्जिट को रोक कर रखेगी। उनके प्लान के अनुसार लेबर पार्टी ब्रसल्स के साथ एक नई डील करेगी और फिर जनता से यूरोपीय संघ में रहने और इस नई डील के बीच चयन करने के लिए कहेगी। कंजर्वेटिव्स ने कॉर्बिन से ये सवाल उठाया है कि इस तरह के बड़े मुद्दे पर वो निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं, लेकिन आज एक प्रचार अभियान में बोलते हुए कॉर्बिन ने जताया कि ये करना सही था। मुझे लगता है कि एक ईमानदार ब्रोकर की तरह सबको साथ लाने का ये सही तरीका है। लोगों ने 2016 में यूरोपीय संघ में रहने या छोड़ने के लिए अपना मत दिया था। उन्होंने अपनी नौकरी खोने के लिए वोट नहीं दिया था। उन्होंने अपनी कंपनियों को बंद करवाने के लिए भी वोट नहीं दिया था, क्योंकि वे यूरोप या वास्तव में कहीं और अपने माल को नहीं बेच पा रहे थे। मुझे लगता है कि एक मध्यस्थ रुख अपनाना वास्तव में एक समझदार तरीका है जो सब लोगों को एक लेकर लिया जा सकता है। ये थे ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। कोलंबियाई राष्ट्रपति इवान द्यूक ने कहा है कि वे देश भर में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय संवाद जैसा कार्यक्रम शुरू करेंगे। उन्होंने इसका ऐलान टेलीविजन पर दिए एक संबोधन में किया। अगले सप्ताह से मैं मौजूदा सामाजिक राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करूंगा, ताकि हम दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ एकजुट होकर काम कर सकें। इससे सामाजिक भेद भी कम होगा। इसके जरिए हम देश में शांति स्थापित कर पाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर ढंग से लड़ पाएंगे। ये थे कोलंबियाई राष्ट्रपति इवान ड्यूके के शब्द। हांगकांग के अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर गंभीर व्यवधान के चलते रविवार को होने वाले स्थानीय चुनावों को स्थगित करने की धमकी दी है। मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच ये चुनाव होना था। छात्र प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस छोड़ने के आदेश को नहीं मान रहा है। बीबीसी के एक संवाददाता का कहना है कि जिला परिषद के चुनाव एक तरह से कैरी लैम के नेतृत्व वाली हांगकांग सरकार पर जनमत संग्रह जैसा है। यूरोपीय संघ ने रूसी संसद के विदेशी एजेंटों पर अपने एक विवादास्पद कानून के दायरे को व्यापक करने की निंदा की है, जिसमें नागरिकों समेत मीडिया आउटलेट्स और एनजीओ शामिल हैं। एक बयान में एक प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा कानून संगठनों को लांछित करता है और रूस के मानवाधिकार दायित्वों के खिलाफ जाता है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी दिलचस्प मोड़ आ चुका है और ये जश्न है देवेंद्र फडणवीस के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने का। श्रोताओं, हम बता दें आज शनिवार है और आज आप बीबीसी इंडिया बोल में अपनी राय रखते हैं। आज का बीबीसी इंडिया बोल का विषय अक्सर विवादों में रहने वाले जेएनयू के ऊपर था, लेकिन हम श्रोताओं से माफी चाहेंगे और आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन कॉल कर सकते हैं आप और हमारा नंबर लिख लीजिए 1811-7000 या 1811-7001 पर। कल रात मुंबई के नेहरू सेंटर में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की एक साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद लगने लगा था कि तीनों दलों की गठबंधन सरकार जल्द ही बन जाएगी और इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। लेकिन आज सुबह बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ले ली। साथ ही सबको चौंकाते हुए एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र की राजनीति पर पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से।
मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस,
मी अजीत अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करू।
आज सुबह 8:07 पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस खबर ने केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश भर में सनसनी फैला दी। कई लोगों को तो इसकी जानकारी मिली प्रधानमंत्री के उस ट्वीट से जिसमें उन्होंने दोनों को बधाई दी थी। शपथ समारोह एक बड़ा अवसर होता है जिसमें आमतौर से दर्जनों लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन आज सुबह सवेरे राजभवन में खामोशी से इस समारोह का आयोजन हुआ। शुक्रवार रात को ये लगभग तय हो चुका था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और वो शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस तरह 20 साल बाद पहली बार शिवसेना का एक मुख्यमंत्री बनने वाला था और ठाकरे परिवार का पहली बार। लेकिन बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई, कैसे बनाई? शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस इसका जवाब यूं देते हैं।
मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है।
शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें इसकी जानकारी आज सुबह उस समय हुई जब कुछ विधायकों ने उन्हें राजभवन से फोन करके कहा कि बीजेपी ने सरकार बना ली है। दो विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी गवाही भी दी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र पर बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक बताया। सेना ने अजीत पवार को धोखेबाज कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार के विरोध में और शरद पवार के पक्ष में नारे लगाए। इसके बाद कांग्रेस के अहमद पटेल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं।
संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविजन है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई है और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। बेशर्मी की भी इंतहा होती है, इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर गए।
बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि केवल 2-3 ही बड़े नेताओं को इसकी जानकारी थी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में बहुमत साबित कर सकेंगे। उनकी पार्टी ने 105 सीटें जीती थी और कहा जा रहा है कि 15 इंडिपेंडेंट विधायक उनके साथ हैं, उन्हें 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। सूत्र बताते हैं कि इन्हें मजीद 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत और दरकार है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता माधव भंडारी कहते हैं कि उनकी सरकार जरूर बनेगी और 5 साल तक चलेगी।
बिल्कुल, हमारी सरकार स्थिर रहेगी और देवेंद्र जी ने पिछले 5 सालों में यह साबित कर दिया है कि देवेंद्र जी किसी भी हालत में, किसी भी कठिन परिस्थितियों में सरकार स्थिर रूप से चलाते हैं, अच्छे रूप से चलाते हैं। इट इज अ वेरी वेल एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस इन ऑल ओवर कंट्री।
कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना गठबंधन ने दावा किया है कि बीजेपी बहुमत साबित करने में नाकाम रहेगी, सरकार उनकी भी बन सकती है। अब ये देखना है कि देवेंद्र फडणवीस 30 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं या नहीं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के शपथ ग्रहण के बाद लगातार अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र के इस बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या कुछ राजनेताओं ने कहा, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी। जी पंकज जी, बताएं कि क्या क्या रहा आज पूरे दिन।
शाहिद, सुबह 8 बजे के करीब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने की खबर आने लगी। नागपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल बजाकर इसका जश्न बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ ही मनाया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बधाई दी। नरेंद्र मोदी का सरकार गठन पर सबसे पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे। शाहिद, अजित पवार के बीजेपी को समर्थन दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना बयान चर्चाओं में आ गया है। यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली का है जिसमें देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि उनके सत्ता में आने पर सिंचाई घोटाले में अजित पवार जेल में चक्की पीसेंगे। यानी राजनीति कैसे बदलती है, इसका उदाहरण आपको देखने को मिला, जरा सुन लेते हैं।
त्रांचा सरकार आल्यानंतर अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग,
ये फिल्मी डायलॉग पूरा
शोले के डायलॉग की तरह है, लेकिन असली शोले अभी चल रही है वहां पे। इसी बयान और भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वे अब उन मामलों की जांच का क्या होगा जिसका देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार ने वादा किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा,
उन प्रकरण का क्या होगा, जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उनका क्या होगा। बात यही है, चुनाव के पहले मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद खूब खाओ, खाकर खूब खिलाओ और ईडी आईटी सीबीआई से मुक्ति पाओ।
दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी पार्टी मुंबई में स्थायी सरकार देगी और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की साजिश नाकाम हुई है।
ये जो नई युति बनी है ये एक स्थायी सरकार देगी, प्रामाणिक सरकार देगी। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा प्रदेश है और मुंबई देश की वित्तीय राजधानी भी है। ये चोर दरवाजे से देश के वित्तीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश थी, ये थी सही बात और ये था सही षड्यंत्र।
दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये साबित हो गया है कि भाजपा देश के लोकतंत्र की सुपारी ले चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी सवाल उठाए हैं।
जी, राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं को विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज प्रियदर्शी जी। बढ़ते हैं आगे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं ने लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक संवैधानिक संकट है और कई नेताओं ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने से कोई संवैधानिक संकट पैदा होता है, इसी के बारे में जानने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सूरत सिंह से बात की।
देखिए, इसमें कानून बड़ा सिंपल है। अगर किसी भी पार्टी के लोग 10th शेड्यूल है जिसमें 2A 2B है, तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, अगर पार्टी छोड़ के चले जाएं या तो, या जो है मर्जर कर लें दूसरे में या डिफेक्ट हो जाए, तीन सिचुएशन है। तो यहाँ सबसे पहले तो एनसीपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने पार्टी तो छोड़ी नहीं है, तो पहला प्रोविजन लागू नहीं होता। दूसरे अभी तक ये क्लियर नहीं है, अगर टू थर्ड मेंबर चले जाएं तो नई पार्टी बन जाती जिसको मर्जर बोलते हैं, और अगर वन थर्ड या उससे ज्यादा चले जाएं तो वो डिफेक्शन में क्वालिफाई नहीं होते, उनको डिफेक्टिव नहीं कहा जाता। तो अभी एक तो ये क्लियर सिचुएशन होनी चाहिए कि 54 एनसीपी में से कितने लोग उधर गए हैं, अभी यही माना जाएगा कि क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है और ना ही कोई विप है, अगर विप को सर्वे करते तो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो अभी इस स्थिति में
कोई नहीं,
ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ये गलत है, क्योंकि अगर एनसीपी और खासतौर से उसका लीडर अजीत पवार जाके बीजेपी के साथ मिल जाता है तो उसमें आज की डेट में कोई डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तीन कंडीशन में होता है कि या तो वो छोड़ के चले जाएं या व्हिप का डिसओबे करें या वन थर्ड से कम लोग जाएं।
जी सूरज जी, आपने कहा कि जब वन थर्ड से कम हो तो जाया जाता है, जैसे कहा जा रहा है कि 11 विधायक हैं शायद उनके साथ, अगर उससे भी कम विधायक होते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएंगे?
हाँ नेचुरली वन थर्ड से कम में आते हैं तो वो आ जाएंगे, और साथ ही वो ये कहें कि हम इस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अगर पार्टी में, क्योंकि अभी व्हिप नहीं आया है, अगर व्हिप है और व्हिप कहे कि शिवसेना को वोट दो, बीजेपी को मत दो, और वो बीजेपी को दें सपोर्ट, तो बात हो जाती है। लेकिन आज की डेट में तो अभी तक नॉलेज के अनुसार कोई व्हिप जारी नहीं किया है व्हिप ने, और अगर नहीं किया है तो दे आर फ्री टू वोट, दे आर नॉट लीविंग द पार्टी, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो एनसीपी के ही मेंबर हैं अभी भी
जी।
तो और ये सिचुएशन में अभी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो रहा है, इट इज नॉट अट्रैक्टेड इवन।
और अगर किस बिहाफ पे जाना चाहेंगे, जैसे शिवसेना ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को उठाएंगे,
अगर ये सिद्ध कर दें कि वन थर्ड से कम लोग जो है उधर चले गए हैं तो वो फिर डिफेक्शन माना जाएगा, और डिफेक्शन माना जाएगा तो इसका मतलब वो हो गए डिस्क्वालीफाई, और डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनको निकाल दिया जाएगा नंबर में से। लेकिन अगर इस तरह से भी करें तो देखना पड़ेगा कि 145 का जो नंबर है वो बीजेपी के पास रहता है कि नहीं
जी। और दूसरी ओर राज्यपाल की भूमिका पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने एक तरीके से, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के लिए काम कर रहे हैं, तो राज्यपाल की
जो है संविधानिक व्यक्ति होता है, उसकी दो दायित्व होते हैं, एक तरफ तो वो राज्य का प्रमुख होता है तो राज्य के प्रति जिम्मेदारी होती है, दूसरी तरफ क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसकी एलिजियंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हो जाती है। तो ये राज्यपाल की स्थिति बड़ी इस मामले में अजीब होती है कि दोनों तरफ को उसको देखना पड़ता है, राज्य प्रमुख होने के नाते बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटी होने के नाते प्रैक्टिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन, और ये पहली बार नहीं हुआ है। गवर्नर ज्यादातर जो है केंद्र सरकार के प्रभाव में आ जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट होते हैं।
ये थे वरिष्ठ वकील सूरज सिंह। महाराष्ट्र में अभी भी राजनीति गर्म है। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार और एनसीपी विधायकों की बैठक चल रही है। मुंबई का शपथ ग्रहण राजनीतिक नैतिकता की दृष्टि से कितना सही है, आज बीबीसी इंडिया बोल इसी विषय पर है। कार्यक्रम में मुफ्त फोन कॉल करें 1811 7000 और 1800 102 7001 पर। हमारे साथ स्टूडियो में बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित मौजूद हैं। आशीष जी, बीबीसी इंडिया बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी क्या क्या हो रहा है, जो ये महाराष्ट्र की बड़ी दिलचस्प पूरी की पूरी राजनीति चल रही है।
अभी की अगर बात करें तो जैसा आपने बताया कि वाईबी चव्हाण सेंटर में एनसीपी के एमएलएज की मीटिंग शुरू है
जी,
और एनसीपी के 5 एमएलएज वहां पर नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अजीत पवार के साथ कम से कम 5 एमएलएस तो है, और इसका मतलब यह है कि एनसीपी में 2 गुट तो तैयार हो गए हैं। एक गुट है जिसमें 49 एमएलएस है, 49 एमएलएस है, और दूसरा गुट है जिसमें 5 एमएलएस है।
जो आशीष जी, ये पूरा अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा था, जब सुबह 8 बजे शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद कहा जाने लगा कि अजीत पवार के साथ 11 एमएलएस हैं, फिर कहा जाने लगा 20 एमएलएस हैं, तो ये बड़ा इस पे संशय बना हुआ था। क्या ये कहा जाए कि अब साफ हो चुका है कि अजीत पवार के साथ सिर्फ 5 एमएलएस हैं?
इस वक्त तो कह सकते हैं कि 5 एमएलएज है। सुबह ज़रूर 10 से 11 एमएलएज अजीत पवार के साथ गए थे, लेकिन उसमें से 6 एमएलएज वापस आ गए हैं शरद पवार के पास। उनमें से कुछ एमएलएज ने ट्वीट किया है कि हम शरद पवार के साथ हैं, कुछ उनमें से 2 लोगों ने बीबीसी मराठी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमें अजीत पवार ने झूठ बताया था।
अच्छा।
उन्होंने हमें बताया था कि हमें नहीं बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है और हमें बस ऐसे ही साथ मिले गए। पता नहीं हम क्या हम उन पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे तो है नहीं, उन्हें ऑब्वियसली पता होगा कि राजभवन जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है।
आशीष जी, आपने इतने दिनों तक महाराष्ट्र की राजनीति को कवर किया है, आप जानते हैं, क्या अजीत पवार ऐसे इतने कद्दावर नेता हैं जो एनसीपी में शरद पवार जैसी शख्सियत के आगे खड़े होकर पार्टी में स्प्लिट कर सकें?
एक ज़माने में अजीत पवार ज़रूर थे, मतलब अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो, लेकिन पिछले लगभग 10 सालों में अजीत पवार इतने बार नाराज़ होते गए और उन्होंने नाराज़गी पब्लिकली भी जताई, तो उसके बाद उनका जो पार्टी में वज़न है वो धीरे धीरे कम होता गया और वो शरद पवार ने भी कुछ हद तक कम किया। तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 4-5 ही MLAs उनके साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन 2009 में जब पहली बार पब्लिकली वो नाराज़ हो गए थे, वो अनरीचेबल हो गए थे 24 घंटों के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं शरद पवार के साथ ही रहूँगा। कुछ ही दिनों पहले जब शरद पवार की ईडी इंक्वायरी के लिए शरद पवार गए थे, उस समय भी अजीत पवार फिर से अनरीचेबल हो गए थे। कुछ ही दिनों पहले, मतलब लगभग 3 या 4 दिन पहले ही, जब शिवसेना और कांग्रेस के साथ मीटिंगें चल रही थी, तब भी अजीत पवार नाराज़ होकर चले गए थे। तो इतने बार ये हुआ है कि जो उनके साथ MLAs थे उनको भी अब लगने लगा है कि भाई इनके साथ हम रहे या ना रहे।
एक आशीष जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि BBC इंडिया बोल का आज का विषय है महाराष्ट्र की राजनीति, और हमारे साथ हैं BBC मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित। आशीष जी, एक अभी TV पे खबर चल रही है कि NCP विधायक दल के नेता दिलीप वलसे पाटिल को चुना गया है, ये क्या है?
क्योंकि बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले जो नेता है पार्टी के, विधायक दल के जो नेता है, वो अजीत पवार का नाम चुना गया था, और इसीलिए आज शरद पवार ने पत्रकार परिषद में भी कहा कि जो 54 MLAs है, जो 54 MLAs हैं, उनके नाम और सिग्नेचर की जो लिस्ट है वो बतौर विधायक दल के नेता वो अजीत पवार के साथ थी, और वही लिस्ट उन्होंने राज्यपाल को, गवर्नर को दे दी, ऐसा आरोप शरद पवार ने किया है। लेकिन अब शरद पवार को ये करना ज़रूरी था, दूसरा नेता अपॉइंट करना ज़रूरी था, क्योंकि जब कल फ्लोर टेस्ट होगा, कल मतलब इस हफ्ते में जब फ्लोर टेस्ट होगा, तब पार्टी का ऑफिशियल लीडर कौन होगा असेंबली के अंदर, ये बताना ज़रूरी था। तो अब दिलीप वलसे पाटिल बन गए हैं, लेकिन अब इसमें यह भी हो सकता है कि दोनों नेता क्लेम कर सकते हैं, मतलब अजीत पवार भी कह सकते हैं देखिए मेरे पास तो लिखा हुआ है, पार्टी ने ही बताया है, और मेरे साथ 54 MLAs भी है, और दिलीप वलसे पाटिल भी। तो अब ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है, ये स्पीकर को, गवर्नर को और कोर्ट में, ये तीनों जगह पे अब ये बैटल चलता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोर टेस्ट, जिसमें क्या होता है देखना होगा।
रुख करते हैं अपने पहले कॉलर का और जानते हैं कि कौन है। जी हमें बताएं, आप कहां से बोल रहे हैं, आपका क्या सवाल है?
सर नमस्कार।
नमस्कार, आप अपना नाम बताएं, अपनी राय रखें।
मैं सर गुजरात से बोल रहा हूँ
जी।
10-15 बार आपसे मुखातिब हुआ हूँ।
जी बिल्कुल।
मेरा नाम DK परमार है, गांव का नाम आमरण है।
जी परमार जी बताएं।
सर ये सब पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है।
जी
हंग पार्लियामेंट मिला लोगों को भले के लिए मिला था, अरे काम अच्छा करत अच्छा होने वाला था
जी।
हंग पार्लियामेंट में ऐसे काम होने वाला था। सर कांशीराम का एक सूत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारे उसकी इतनी हिस्सेदारी।
जी
ये फ्लोर टेस्ट में मैं मानता हूँ कि पास नहीं हो सकेंगे अजीत पवार साहब
जी,
क्योंकि शरद पवार मजे हुए शख्सियत है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। मैं जान सकता हूँ मेरी किससे बात हो रही है?
हाँ जी सर।
जी बताएं, आप अपनी राय रखें आज के विषय पर।
हाँ सर, मैं पूछत से अरुण बगरे बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से।
जी जी रखे, आप ही के राज्य की बात हो रही है।
हाँ जी सर, ये जो मैंडेट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पब्लिक ने दिया था वो BJP की तरफ था
जी,
और उनका 30 साल का जो दोस्त था शिवसेना, वो उनसे अलग हो गया टाइम पे
जी,
कुछ नाराजी हो गई उनकी
जी।
तो कांग्रेस ने इनको 15-20 दिन तक के हो गया सरकार नहीं बना सकी, तो अजीत पवार को तो कुछ तो भी सोचना ही था ना कि हम किसके साथ, और इनको भी सोचना था
जी। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय के लिए आशीष दीक्षित जी। आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि बहुत दिन हो गए थे। तो मेरा सवाल सर आपसे ये भी है कि जो शिवसेना NCP कांग्रेस ने जो सरकार बनाने में देरी की, इतने दिन तक लगे रहे, मीटिंगें करते रहे, बैठकें करती रही, कल रात जाके भी कहा जा रहा था कि तय हो गया, क्या इसका लाभ BJP को मिला है या इसकी वजह से अजीत पवार उधर?
यही आरोप कांग्रेस पर बार बार किया जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, जो कर्नाटक या गोवा में हुआ था कि कांग्रेस बहुत टाइम लेता है कोई भी फैसला लेने में
जी।
तो 9 नवंबर को जो आखिरी दिन था सरकार बनाने के लिए, और जिसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, उस समय तक कांग्रेस अपना मन नहीं बना पाई। कांग्रेस का कहना था कि हमें चर्चा करनी पड़ेगी दिल्ली में, मुंबई में, उनके एमएलए जयपुर में थे तो तीन जगह पे चर्चाएं चल रही थी। तो कांग्रेस पर यह बार बार आरोप हुआ है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी और इसकी वजह से ये बीजेपी को अपॉर्चुनिटी मिल गई। और दूसरी बात जो अभी अभी कॉलर ने कही थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो कह रहे थे कि बीजेपी को मैंडेट मिला था, शायद वो बीजेपी के सपोर्टर भी हो सकते हैं, और वो कह रहे थे कि अजीत पवार ने तो उनका साथ देना ही बनता था क्योंकि बीजेपी के पास मैंडेट था। तो अब बीजेपी के जो सपोर्टर्स है वो अजीत पवार को अपना मानने लगे हैं। इसी अजीत पवार के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने इतने आरोप किए थे कि ये आदमी इतना भ्रष्टाचार करता है, और अभी उन्हीं की सराहना हो रही है। और आज बीजेपी ने नया नारा भी दिया है महाराष्ट्र में, फडणवीस पवार आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। तो ये
देखिए राजनीति कैसे 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 मोड़ लेती है और कैसे कैसे कल का दुश्मन आज का दोस्त हो जाता है। और बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। हमारे स्टूडियो मैनेजर अजीत सारथी कह रहे हैं कि हमें पहला कॉलर, एक और कॉलर ले लेना चाहिए। जी बताएं।
मैं गोंडा से शशांकधर बोल रहा हूं।
जी शशांकधर जी बताएं, आपकी राय क्या है इस विषय पर?
राय तो मेरी यही है, जो है समर्थ को नह दोष गोसाई
जी,
वो है ये हमारे संविधान निर्माताओं ने जो बनाया था
जी
संविधान में, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है
जी।
तो मेरा सवाल ये है कि ये चुनाव के पूर्व में
जी
ये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है कि जिससे ये विखंडन ना हो, जो है ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। रुख करते हैं एक और कॉलर की ओर। जी, जी मेरी किससे बात हो रही है, मैं जान सकता हूँ?
जी मैं पप्पू राम बोल रहा हूँ सर, सुल्तानपुर के, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से।
जी पप्पू जी सुल्तानपुर से, आप बताएं आपकी क्या राय है?
जी सर जानना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जो सरकार बनी हुई है वो कितनी संवैधानिक है मौके पर?
कितनी संवैधानिक है?
कितनी संवैधानिक है? और राज्यपाल महोदय जिस तरह से गुपचुप तरीके से जनता के विश्वास को तोड़ रही है, डेमोक्रेसी है, दिस इज नो डिक्टेटरशिप
जी। जी
तो इसी पे मेरा सवाल है कि ये कितना संवैधानिक है, कि कितने संविधान का इन्होंने पालन किया है हमारे राज्यपाल महोदय ने?
जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। हम आपको बता भी दें, आप अगर रेडियो सेट पे सुन रहे हैं, हमने अभी सूरत सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं उन पे आपकी राय, हमने अपनी राय भी सुनवाई थी संवैधानिक संकट के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। आशीष जी इन्होंने भी संवैधानिक जैसी बातें पूछी, वो तो आपने बहुमत दिया और अजीत पवार ने 54 विधायकों का समर्थन पत्र दिया और उसके आधार पर शपथ हो गई है, तो एक तरीके से नियमों के तहत ही ये लोग गए हैं ऐसा
अगर,
नहीं है।
अगर प्रोसीजर की बात करें, जो अभी अभी इन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये संवैधानिक है
जी,
तो अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर तो पूरा फॉलो किया
बिल्कुल
है। मतलब सुबह 5:47 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सिग्नेचर भी कर दिया था और जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो खत्म कर दिया था। उसके बाद में जो गवर्नर है उन्होंने प्रेसिडेंट जो देवेंद्र फडणवीस है बीजेपी के लीडर उनको बुलाया था, तो प्रोसीजर फॉलो हुआ है। लेकिन जिस तरीके से फॉलो हुआ उस तरीके पर बिल्कुल सवाल पूछे जा सकते
हैं। एक आशीष जी ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना ने जिस आधार पर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है वो कह रही है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद ही राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है, वो नहीं हुई है।
ऐसे ही और 9 सवाल ये कांग्रेस पार्टी ने भी आज पूछे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये ग्रे एरिया है और मुझे लगता है कि वो लड़ाई अलग से कोर्ट में होने वाली है। जिस तरीके से ये किया गया, कैबिनेट की बैठक नहीं होना या फिर इतने जल्दी जल्दी में सब कुछ कर देना, या फिर कांग्रेस का और एक सवाल था कि हमें क्यों नहीं बुलाया सरकार बनाने के लिए, अगर आपने बीजेपी को बुलाया, शिवसेना को बुलाया, एनसीपी को बुलाया तो हमें भी बुला लेते। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं।
आशीष जी एक आखिरी सवाल आपसे, आप पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को देख ही रहे हैं, आपको क्या लगता है अब तक की पूरी राजनीति जो अब तक होती रही है महाराष्ट्र में, अब ये किस दिशा में जाते हुए दिख रही है आपको?
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोर टेस्ट, कि क्या देवेंद्र फडणवीस अपना बहुमत साबित कर सकते हैं या नहीं असेंबली के अंदर, ये सबसे जरूरी बात है। थोड़ी ही देर पहले बीबीसी से बात करते हुए बीजेपी के जो सीनियर लीडर है नारायण राणे, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि बाजार में बहुत सारे एमएलए अभी भी बाकी है। तो उन्होंने ये क्लियरली कहा बीबीसी से बात करते हुए कि हम शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों दलों के एमएलए के कांटेक्ट में हैं और हम उनमें से कुछ एमएलए हमारे साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी के पास अभी तो बहुमत नहीं है, लेकिन एक हफ्ते में वो बहुमत पाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। और ये हमने पहले कर्नाटक में भी देखा है कि ऑपरेशन लोटस के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया था।
लेकिन दूसरी ओर शिवसेना भी अपने विधायकों को अब सुरक्षित रखने की,
सभी कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना,
अजीत पवार को अब तक निलंबित नहीं किया गया एनसीपी से और ना ही कोई फैसला लिया गया?
क्योंकि अगर अजित पवार को या और लोगों को पार्टी से निकाल देते हैं तो फिर अजित पवार फ्री हो जाते हैं और अजित पवार अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित। आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। आपसे अब अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। सभी सहयोगियों के साथ मोहम्मद शाहिद को दे अनुमति। नमस्कार।